अध्याय सात, रूस और जापान का युद्ध 1904 से 5। पृष्ठ संख्या 83। पश्चिमी देशों के साम्राज्यवादी अतिक्रमण से बचने के उद्देश्य से अतिशय महत्वाकांक्षी मेजी राज्य ने तीन जोखिम भरे उत्तरोत्तर सैनिक अभियान लड़े। उनमें से एक 1904 से 5 का रूस जापान युद्ध भी था। इसके अतिरिक्त 1894 से 95 में हुआ चीन जापान युद्ध और 1910 में जापानियों द्वारा कोरिया पर विजय, ऐसे दो और अभी। परंतु इन अभियानों में की प्रशंसनीय सफलताओं ने न केवल जापान को अर्धशताब्दी से स्थापित पुराने संधिपोत व्यवस्था से मुक्त ही किया, बल्कि पश्चिमी देशों की तुलना में उसे एक साम्राज्यवादी देश के रूप में भी खड़ा किया। इसके परिणाम स्वरूप अनौपचारिक जापानी साम्राज्य की स्थापना भी हुई और उससे संबंधित कूटनीति 1945 तक की दुखद घटनाओं तक व्याप्त रही। वास्तव में जिस तरह रूस ने असहाय और कमजोर छिंग सरकार से राज्य क्षेत्रातीत सुविधाएं प्राप्त की थी और मंचूरिया और दूसरे क्षेत्रों में ट्रांस साइबेरियन रेलवे का संचालन करते हुए वह समुद्र तट तक पहुंच गया था, उससे स्पष्ट होने लगा था कि वह इस क्षेत्र के समृद्ध प्राकृतिक और खनिज संसाधनों पर एकाधिकार कर लेगा। जापान भी चिरकाल से इन संसाधनों को अपने औद्योगिकरण के लिए अनिवार्य मान रहा था। ऐसी स्थिति में 1904 से 5 तक दोनों के बीच संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। रूस जापान संबंध 1697 से दृष्टिगोचर होते हैं, जब एक जापानी कमचत्का के तट पर पहुंचा था तो उसे जार पीटर के दरबार में प्रस्तुत किया गया था और जापान के साथ वाणिज्यिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से उसे जापानी भाषा सिखाने के लिए प्रशिक्षक नियुक्त किया गया था। रूस जापान व्यापार की संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से 1760 और 1770 के दशकों में अनेक रूसी जापान पहुंचने में सफल रहे, परंतु राष्ट्रीय एकांतता, नेशनल सेक्लूशन की नीति अपनाने वाले जापान ने उन्हें अपने यहाँ प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद रूसियों द्वारा जापानियों की सद्भावना को जीतने का प्रयास जारी रहा। 1792 के बाद उन्होंने परित्यक्त जापानियों को वापस लौटाने के बहाने समझौता करने का प्रयास किया। जब रूसी लगातार जापान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने में असफल रहे तो उन्होंने बल का प्रयोग किया। इसके परिणाम स्वरूप रूसियों ने उत्तर में स्थित जापानी बस्तियों, विशेष रूप से इतो रोफू, शाखालिन, होकाइडो पर छापे मारे। इन छापों के दौरान 1811 में रूसी अधिकारियों को बंदी बना लिया गया और उन्हें जापानी बंदियों के बदले रिहा कर किया गया। साथ ही रूस ने दोबारा ऐसा न करने का आश्वासन दिया। 1843 में जब ब्रिटेन चीन में उसी स्थिति में पहुंच गया जो रूस को नरचिस्क और कियाकता की संधियों के आधार पर प्राप्त हुई थी, तब जार निकोलस प्रथम ने जापान में प्रवेश प्राप्त करने के उद्देश्य से वाइस एडमिरल पुटियाटिन को भेजने का फैसला किया। आर्थिक कारणों के आधार पर चांसलर और वित्त मंत्री ने इसका विरोध किया, 1852 में इस योजना को दोबारा सक्रिय किया गया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग में यह खबर पहुंची थी कि एक संभावित अमेरिकी अभियान जापान जाने वाला था। साइबेरिया के गवर्नर जनरल मुराविव ने यह चेतावनी दी कि यदि रूस पूर्वी एशिया में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति को बनाए रखना चाहता था तो उसे जापान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने चाहिए। उसने यह भी कहा कि जिस तरह ब्रिटेन और अमेरिका ने चीन में अपने प्रभाव को बढ़ाया था, वह स्थिति जापान में पैदा नहीं होने देनी चाहिए। पुटियाटिन 1853 में नागासाकी पहुंचा। यदपि 1854 में आरंभ हुए क्रीमिया युद्ध में रूस उलझ गया और सुदूर पूर्वी क्षेत्रों में उसकी सैनिक क्षमता छिन्न हो गई। इसके बावजूद पुटियाटिन ने फरवरी 1855 में रूस जापान संधि की। यह संधि पेरी द्वारा की गई कानागावा की संधि से अधिक व्याप्त थी। इसके परिणाम स्वरूप दो की अपेक्षा तीन बंदरगाह शिमोदा, होकोदाते व नागासाकी खोले गए। शिमोदा या होकोदाते में रूस को दूतावास स्थापित करने की अनुमति दी गई और परस्पर विशेष क्षेत्रातीत अधिकारों की व्यवस्था के का साथ साथ रूस जापान सीमा रेखांकित की गई। इसके बाद अगस्त 1858 में जापानी अधिकारियों और पुटियाटिन के बीच मैत्री और व्यापार के लिए एक संधि हुई। इस संधि में व्यापार की स्थापना और मंत्रीगणों के आदान प्रदान की व्यवस्था थी। 1868 में मेजी पुनः स्थापन और तोकुगावा शोगुनेत के स्थान पर केंद्रीकृत सरकार की स्थापना के बाद दूसरे देशों के प्रति जापानी नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। नई सरकार के सम्मुख तीन उद्देश्य थे। पहला, जापान में नई सरकार के प्रभाव की स्थापना और उसका सुदृढ़ीकरण। दूसरा, जापान की स्वतंत्रता पर और अधिक अतिक्रमण को रोकना। तीसरा, तोकुगावा के समय में असमान संधियों के अंतर्गत जापान की न्यायिक व्यवस्था और सीमा शुल्क स्वतंत्रता पर लगे प्रतिबंध को हटाना। परिणाम स्वरूप 1868 से 75 के दौरान लगातार ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण जापान सखालिन प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा पर रूस से कोई भी समझौता करने में असफल रहा। 1875 में हुई संधि के तहत जापान ने संपूर्ण सखालीन पर रूस के अधिकार को स्वीकार किया और इसके बदले में उसे कुरील प्रायद्वीप प्राप्त हुए। इस संधि के बाद रूसी जापानी मैत्री का वह शांति का दौर शुरू हुआ जो 1891 तक चला। इस समय दोनों के संबंध और भी मधुर हो गए, क्योंकि रूस ने सुदूर पूर्व और जापान ने आंतरिक पूर्व में अपनी गतिविधियों पर रोक लगा दी। इस तरह जापान अपने आंतरिक पुनर्गठन से संबंधित समस्याओं में लीन हो गया, परंतु 1891 से 1905 के बीच ट्रांस साइबेरिया रेलवे के गठन और विस्तार के कारण रूस एक बार फिर सुदूर पूर्व में दिलचस्पी लेने लगा। परिणाम स्वरूप कोरिया और मंचूरिया में दोनों देशों की पारंपरिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि दोनों व्यापार के प्रतिद्वंद्वी थे, क्योंकि वे केवल कोरिया या मंचूरिया में कुछ कच्चे माल को लेकर संघर्ष कर रहे थे। मंचूरिया में रूसी स्थल सेना और नौसेना की गतिविधियों के कारण जापान स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगा। स्थिति तब और भी खतरनाक प्रतीत होने लगी जब पूर्वी एशिया में रूसी रेलवे प्रणाली कार्यरत हो गई। सुदूर पूर्व में रेलवे के गठन का महत्व इस तथ्य में निहित था कि उसका प्रयोग साम्राज्यवादी हथियार के रूप में किया गया। रूस, जापान और दूसरे देश कमजोर चीनी और कोरियाई सरकारों पर अधिक रेलवे सुविधाएं प्राप्त करने के लिए दबाव डाल रहे थे। इन रेलवे सुविधाओं की प्राप्ति के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय द्वेष को जन्म दे रही थी, और यह स्पष्ट हो गया था कि पेचिंग से सियोल तक के प्रदेशों में अधिक सुविधाओं की प्राप्ति के लिए संघर्ष होगा। रूस के विशाल रेलवे प्रसार ने जापानी सैनिक अधिकारियों के दिल में चिंता पैदा कर दी। उन्हें लगा कि इससे उनके प्रायद्वीप की सुरक्षा को खतरा था और यह निष्कर्ष निकला था कि इस संपूर्ण रेलवे व्यवस्था के गतिशील होने से पूर्व ही उस पर रोक लगा देनी चाहिए। फ्रांसीसी वित्तीय सहायता से गठित विस्तृत रूसी रेलवे के बारे में जापानी आकांक्षाएं तब और अस्पष्ट हो गई जब उसने 1894 से 95 में घटित चीन जापान युद्ध के उपरांत शिमोनोसेकी की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार चीन द्वारा जापान को ताइवान प्रायद्वीप तथा पेस्काडोर समूह देना तय हुआ। 1904 से 5 में होने वाले रूसी जापानी युद्ध को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि प्रमुख चीनी प्रदेशों में से जापान को कौन से प्रदेश सौंपे गए। यह प्रदेश लियाओतुंग प्रायद्वीप था, जिसकी सीमाएं यालू नदी से शुरू होकर आनफिंग के मुखोद्वार तक जाती थी और उसके उपरांत फंग हुआन के हाएचंग होते हुए न्यूचुआंग तक पहुंचती थी। इसमें लियाओतुंग खाड़ी के पूर्वी हिस्सों में स्थित फंग थिएन का प्रदेश और पीत सागर के उत्तरी हिस्से शामिल थे। इसका अभिप्राय यह है कि जापान को अस्थायी रूप से लियाओतुंग का वह एक विस्तृत हिस्सा मिल गया जिसमें चीन की उत्तरी नौसेना का आर्थर बंदरगाह भी था। शीत ऋतु में लियाओतुंग प्रायद्वीप के बंदरगाह बर्फ के प्रभाव से मुक्त रहते थे, जिसके कारण यह प्रायद्वीप मंचूरिया में प्रवेश का प्रमुख द्वार था। इसी कारण प्रारंभ से ही प्रमुख शक्तियों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस व अमेरिका के सहयोग को प्राप्त करते हुए चीन ने इन हिस्सों को अपने ही नियंत्रण में रखने का भरसक प्रयत्न किया। चीन द्वारा जापानी आदेशों के खिलाफ इन शक्तियों के सम्मुख जिस तरह से अपने स्थिति को पेश किया गया, उसके परिणाम स्वरूप रूस, फ्रांस और जर्मनी तीन प्रमुख शक्तियों ने संयुक्त रूप से जापान को मैत्रीपूर्ण सलाह प्रस्तुत की कि वह लियो कि वह लियाओतुंग प्रायद्वीप पर अपना अधिकार स्थापित करने की मांग को न दोहराए। इससे चीन की राजधानी को लगातार खतरा बन सकता था और पूर्व में स्थापित शांति को ठेस पहुंच सकती थी। कुछ समझौतों और युद्ध नीतिक पुनर्विचारों के उपरांत जापान ने मई 1895 में चियाओचोउ प्रदेश को छोड़कर संपूर्ण लियाओतुंग पर अपने नियंत्रण का परित्याग करना स्वीकार कर लिया। इस पेशकश के अनुसार जापान केवल 1/8 हिस्से पर अपने अधिकार को स्थापित रखते हुए 7/8 हिस्सा छोड़ने को तत्पर था। इससे आर्थर बंदरगाह भी था। इसमें आर्थर बंदरगाह भी था और इस तरह वह 1895 में पेरिस संधि और इस तरह वह 1895 में पारित संधि से प्राप्त एक विस्तृत सामरिक महत्व के प्रदेश को छोड़ के इस तरह वह 1895 में पारित संधि से प्राप्त एक विस्तृत सामरिक महत्व के प्रदेश को छोड़ने के लिए तैयार था।